ओम शांति। अब इस समय हम सभी देख रहे हैं चारों तरफ कि अब वो विश्व परिवर्तन का समय आ गया है, जिसको हम बाबा के द्वारा, साकार बाबा के द्वारा सुना, अव्यक्त मुरलियों में सुना। अभी सारत्र के समाचार यही बता रहे हैं कि अब समय परिवर्तन का है, और इस समय परिवर्तन के जिम्मेवार कौन है, इसके आधार मुहूर्त कौन है। इस परिवर्तन के आधार मुहूर्त है हम आत्माएं, जो बाबा ने कोटों में से कोई को चुना है। हम में से हर एक विशेष आत्मा है जो इस परिवर्तन के लिए जिम्मेवार है। हम सभी को जैसे शिव बाबा किस लिए आए हैं धरा पर, वो आए हम सबको वापस घर ले जाने। पर बाबा ने आज की मुरली में भी कहा, कल शाम की मुरली चली उसमें भी बाबा ने इशारा दिया कि हम आत्माएं यहां से पवित्र बन करके ही वापस जा सकते हैं। हम परमधाम घर से सत्युग के शुरू में जब आए थे तो हम पावन सत्व प्रधान आए थे, अशरीरी आत्मा परमधाम से आई थी, और अब वापस घर जाने का समय है। बाप हम आत्माओं को लेने के लिए आया है, और अब हम आत्माओं को अशरीरी बाप के साथ अशरीरी बन के जाना पड़ेगा, पावन सत्व प्रधान बन के ही जाना पड़ेगा। पतित आत्मा वहां पर जा नहीं सकती है। अब दो तरीके हैं पावन बनने के, एक तो है प्यार से बाबा के श्रीमत पर चल करके हम पावन बने, पावन सत्व प्रधान बने, और दूसरा तरीका जो है वो है मार से। माने आने वाला जो समय है, जो आप सुन रहे हैं अभी गाजा में, यूक्रेन में और भी जगह पर, ऐसी ऐसी मतलब जहां पर ऐसी भयानक परिस्थिति है, जहां खाने को नहीं है, हर समय मरने का डर है, किस समय कौन सी मिसाइल कहां गिर जाए, कहां बम फट जाए, रहने को घर नहीं है, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, कोई साधन नहीं है, है मनुष्य किंतु मनुष्य जैसी कोई सुविधा उनको नहीं है, तो ऐसी स्थिति जिसके द्वारा अंत में जब विनाश, अभी तो उनके लिए यहां तो विनाश चल ही रहा है, तो हमारे सामने भी, हालांकि वो इस समय ऐसा लगता है कि उनके पास साधन तैयार है। पहली बार ऐसा हुआ जबकि एटॉमिक वॉर के वेपन्स तैयार हैं, रेडी मोड में है, सिर्फ बटन दबाने भर की देर है, किंतु बटन दबा नहीं पा रहे हैं। जो निमित्त आत्माएं हैं वो बटन दबा नहीं पा रहे हैं। नेचर भी पिछले दो साल में 2023 और 2024 में नेचर ने भी वो रंग दिखाया जो आज तक कभी नहीं दिखाया था। जहां पर सूखा था, जहां पर रेगिस्तान था, वहां बाढ़ आई, और जहां पर कभी सर्दी नहीं पड़ती, जब कभी गर्मी नहीं पड़ती, वहां गर्मी बहुत पड़ी है। तो नेचर भी दिखा रही है कि अब पांचों तत्व भी परिवर्तन करना चाहते हैं। जैसे आज कहा था ना वरदान, बाबा ने कहा तुम्हारे सर्वेंट कौन से हैं, नेचर प्रकृति के पांचों तत्व और साइंस के साधन, ये हमारे सर्वेंट हैं, अर्थात इस धरती को क्लीन करने में, स्वर्ग बनाने में मदद करेंगे, सफाई करने में हमारी मदद करते हैं। अब हम देखते हैं कैसे हम जो हमारा जो लक्ष्य है कि अभी हम अव्यक्त, सभी मनुष्य इसमें व्यक्त रूप में है, व्यक्त माना वो बोलचाल की भाषा में आते हैं, अपने को साकार देहधारी समझ करके व्यवहार में आते हैं, संबंध संपर्क में आते हैं, और अभी बनना है हमको अव्यक्त, अव्यक्त अर्थात व्यक्त भाव और भावना से परे। पहले जब ब्रह्मा बाबा ने, शिव बाबा ने से ब्रह्मा के द्वारा हमको, शिव बाबा तो अव्यक्त ही है कि, तो उन्होंने क्या किया, हमको साकार ब्रह्मा के द्वारा पालना दी, पूरे 33 वर्ष हमको पालना दी, और बाबा से हम जब चाहे मिल सकते थे, बाबा हमेशा अवेलेबल थे बच्चों के लिए, और उनके द्वारा किंतु जो बाबा से मिलते थे तो बच्चे अव्यक्त हो जाते थे, अव्यक्त भाषणा उनको आती थी, तो अव्यक्त बाप दादा ने साकार ब्रह्मा बाबा के अंदर आके अव्यक्त भाषणा दी और फिर बाबा के जाने के बाद 1969 से 1969 से लेकर के और 2017 तक 49 साल बाबा ने गुलजार दादे के साकार माध्यम के द्वारा बाप दादा ने शिव बाबा ब्रह्मा बाप ने आकर के हम बच्चों की पालना की। और 2017 के बाद 7 वर्ष हो गए पर बच्चों को आदत पड़ गई बाबा से अव्यक्त बाप दादा से व्यक्त में मिलने की। और अभी हमें क्या क्या प्रैक्टिस चाहिए? अव्यक्त बाप दादा से अव्यक्त में मुलाकात करें। अभी बाबा नहीं आते हैं, या यूं कहें बाबा तो आते हैं पर अव्यक्त हैं, हम उनसे कब मुलाकात कर सकते हैं? अगर हमारी स्थिति अव्यक्त हो तो, अगर हमारी स्थिति व्यक्त में है तो हम बाबा से मुलाकात नहीं कर सकते हैं। अगर हम अव्यक्त बन जाएं, अगर हमारी स्थिति अव्यक्त हो जाए तो हम बाबा से जहां भी रहते हैं, जहां भी हैं, हम बाबा से मुलाकात कर सकते हैं। या यूं कहें हम स्थूल वतन में रहते रहते सूक्ष्म वतन को यहां ला सकते हैं। तो आज हम समझेंगे कि कैसे हम व्यक्त में रहते हुए अव्यक्त बने। जैसे हम सभी जानते हैं कि हम वो ब्राह्मण हैं, हम वो विश्व में चुनी हुई आत्माएं हैं जिनको शिव बाबा, मीठे शिव बाबा ने अव्यक्त ब्रह्मा बाबा, हम में से सभी लगभग, मैं समझता हूँ शायद ही कोई बाबा के साकार बाबा के समय का होगा। है कोई साकार बाबा के समय के 1969 से पहले के हैं कोई जिन्हें साकार बाबा से पालना ली? कोई नहीं होगा, सभा में तो कोई नहीं होगा। तो हम सभी को मीठे शिव बाबा ने, मीठे प्राण अव्यक्त ब्रह्मा बाबा द्वारा हमको दिव्य ब्राह्मण जन्म दिया, राइट? हमको दिव्य ब्राह्मण जन्म दिया और दिव्य ब्राह्मण जन्म देते ही हमको 2 गिफ्ट दे दिए। वो हमारी बर्थडे गिफ्ट है। कौन कौन सी बर्थडे गिफ्ट है हमारी? पहली है दिव्य दृष्टि और दूसरी है दिव्य बुद्धि। जितना जितना हम दिव्य दृष्टि को यूज करते जाते हैं तो दिव्य बुद्धि एक लिफ्ट है, दिव्य बुद्धि एक विमान है जो 1 सेकंड में मुझ आत्मा को सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद का अनुभव करा सकता है। सूक्ष्म वतन में बाप दादा से भिन्न भिन्न संबंधों के अनुभव की अथॉरिटी बन सकते हैं। बाबा से, बाप दादा से हम माता, माता पिता, शिक्षक, सतगुरु, बंधु, सखा, साजन, सर्जन और बच्चा, ये मुख्य 9 संबंध हैं। एक एक संबंध को रियल में रियलाइज कर सकते हैं, महसूस, सच्चे दिल से महसूस कर सकते हैं और उसके अनुभव की अथॉरिटी बन सकते हैं। क्योंकि जब हम अनुभव की अथॉरिटी बन जाते हैं तो हमें, हम उस चीज को जब चाहे जहां चाहे यूज कर सकते हैं। एक्चुअली बाबा से सर्व संबंधों, जैसा समय, जैसा स्थान, जैसा कार्य, वैसे बाबा को यूज करना ही निरंतर योगी बनना है। तो ये दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट, वंडरफुल लिफ्ट है जो 1 सेकंड में मुझे आत्मा को सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद का अनुभव कराती है, भिन्न भिन्न संबंधों के अनुभव करा देती है। जब भी हमें को कार्य हो बाबा के पास हम जाके उनसे बात रूढ़िहान कर सकते हैं। ये दिव्य बुद्धि लिफ्ट इतनी वंडरफुल लिफ्ट है, पर सूक्ष्म वतन में जाने के सूक्ष्म शरीर चाहिए और फिर परमधाम में अशरीरी आत्मा बना करके, अशरीर स्थिति में मुझे आत्मा को स्थित करके अशरीरी बाप के पास परमधाम घर में उनसे कंबाइंड स्थिति का अनुभव करा सकती है, अर्थात आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, अपने विक्रम विनाश कर सकते हैं और परमधाम घर में ही हम निराकार स्थिति का अनुभव कर सकते हैं, मास्टर बीज रूप स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। और ये ही दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट मुझ आत्मा को इवन सुखधाम में स्वर्ग की अनुभूति भी करा सकती है। जैसे जैसे मेरी स्टेज सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमोधन की बनती जाएगी, उतना उतना ये दिव्य बुद्धि रूप में वो एबिलिटी भी आ जाएगी कि हम यहां बैठे बैठे, वो अंत में वो स्थिति आएगी जब यहां बैठे बैठे हम कहां पहुंच जाएंगे? स्वर्ग के नजारे हमें सामने दिखाई दे रहे होंगे। दुनिया में विनाश हो रहा होगा और हम कहेंगे हम तो बाबा, हम तो स्वर्ग में हैं। वो बीच का पर्दा खत्म हो जाएगा। हमें बहुत खुशी होगी उस समय। हम साक्षात्कार तो क्या, हम सामने देखेंगे कि हमारे सामने स्वर्ग, मैं स्वर्ग में हूं, मैं अपने महल में हूं, दास कर रहे हैं, तो हमें बहुत खुशी होगी उस समय। तो बाबा ने कहा अंत में बाबा ऐसी आत्माओं को बहुत पालना देंगे, जैसे शुरू में वैसे अंत में होगा। और यही सूक्ष्म दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट, सपोज आप रहते हैं भोपाल में, या आप इंदौर में रहते हैं, या किसी और रतलाम में रहते हैं, जहां भी आप रहते हैं, वहां से ये दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट आपको डायमंड हॉल में ला, एक सेकंड में ला सकती है, बाबा कमरे में ला सकती है, पांडव वन में बाबा के कमरे का अनुभव करा सकती है, झोपड़ी का अनुभव करा सकती है, शांति स्तंभ का अनुभव करा सकती है, हिस्ट्री हॉल का अनुभव करा सकती है, ओम शांति भवन का अनुभव करा सकती है। तो दिव्य रूपी बुद्धि रूपी लिफ्ट ये भी कर सकती है कि इस दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट से आप एक सेकंड में किसी कहीं भी जाके मनसा सेवा कर सकते हैं। ये बड़ी वंडरफुल लिफ्ट है, पर कब काम करेगी? जब दिव्य दृष्टि को हम यूज करना सीख जाएंगे। ये दिव्य बुद्धि, दिव्य दृष्टि को जितना जितना हम यूज करते हैं, उतना उतना ये दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट एक्टिव होती जाती है। तो देखते हैं हम कि कैसे इस दिव्य दृष्टि को हम यूज करें, और कैसे इस दिव्य बुद्धि की जो लिफ्ट है ना, ये लिफ्ट ही हमको व्यक्त से अव्यक्त बनाने का साधन है। यही व्यक्त से अव्यक्त की ओर हमको ले जाती है। तो कैसे हम दिव्य दृष्टि को यूज करें कि दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट काम करना शुरू कर दे? इसमें बहुत रिफाइंड साधन चाहिए। रिफाइंड साधन क्या है? जैसे एक हेडक्वार्टर होता है ना, कोई सर्वर, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक हमारे जो कंप्यूटर्स होते हैं, एक सर्वर होता है जहां पर सारे सूक्ष्म बतन, जैसे क्या है, एक सर्वर रूम है, या यूं कहें एक हेडक्वार्टर है जहां पे तारे पहुंचती हैं सारे विश्व से। किंतु किनकी तार पहुंचती है? जिन आत्माओं के शुद्ध संकल्प होते हैं, शुभ भावना होती है, शुभ भाव अर्थात वृत्ति होती है, और शुभ और श्रेष्ठ वृत्ति होती है, स्मृति होती है, वो पॉजिटिव भावना, संकल्प, वृत्ति और स्मृति की तारे वहां तक पहुंचती है। तो हेडक्वार्टर है जैसे एक तरह का, और ये सूक्ष्म वतन जो है सिर्फ सूक्ष्म संगम पर ही है, पूरे कल्प में नहीं है। जब शिव बाबा आते हैं धरा पर, ब्रह्मा के तन में आने से पहले सूक्ष्म वतन की स्थापना करते हैं। ये बहुत गुह्य राज है। तो सूक्ष्म वतन जो है, अब हम उसकी गहराई में भी समझेंगे और सूक्ष्म शरीर भी समझेंगे, ये दोनों चीज समझनी बहुत आवश्यक है। देखिए जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी मनुष्य धरती पर हैं, सबके सब मनुष्य जो हैं वो देहभान, उनके दिल में क्या है, उनकी चेतना में क्या है, उनकी बुद्धि में, मन में, संस्कार में क्या भरा हुआ है? आत्मा की तीन सूक्ष्म शक्तियां, उसमें क्या भरा हुआ है? उसमें देहभान भरा हुआ है, बुद्धि में भी, मन में भी, संस्कारों में, संस्कार में आदतें, देहभान भरा हुआ है सभी में। सभी अपने को देह के रूप में देखते हैं, हम भी अपने आप को देह के रूप में पहले देखते थे। देह अभिमान भरा हुआ है, रोल कॉन्शियस, मैं मेल हूं, मैं फीमेल हूं, मैं डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं, या बिजनेसमैन हूं, या व्हाटएवर जो भी हमारा पद है, मैं हाउसवाइफ हूं, ये देहभान, देह अभिमान माना रोल कॉन्शियसनेस भरी हुई है। देह अभिमान के संबंध संपर्क भरे हुए हैं, ये मेरी माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, दोस्त, ये सब भरा हुआ है बुद्धि में, मन में, संस्कारों में भी, तीनों में यही चीज भरी हुई है। और देह अभिमान के पदार्थ भरे हुए हैं, जो भी हमारे पदार्थ हैं, मकान है, जायदाद है, प्रॉपर्टी है, कार है, बैंक अकाउंट है, वही भरा रहता है हर समय, उन्हीं के बारे में विचार चलते हैं, बुद्धि में भी, मन में भी, संस्कार वही भरा हुआ है। और देह अभिमान से पैदा होने वाले पांच आसुरी स्वभाव, ये भी हमारी चेतना, बुद्धि में, मन में, संस्कार में भरा हुआ, तीनों ही चीज भरी हुई है। आसुरी स्वभाव कौन से? पांच विकार आसुरी स्वभाव, जो आज बाबा ने कहा नेचर, नेचर माना स्वभाव, नेचर क्योर है ना, ये जो पांच हमारे आसुरी स्वभाव है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और इन पांच विकारों के वश होकर जब हम जो कर्म करते हैं, उससे आत्मा की सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं का ह्रास होता है। सात चैतन्य आत्मिक ऊर्जाएं कौन सी हैं? पहली पहली है ज्ञान अर्थात सत्य की समझ, जिसको आम भाषा में हम सार रूप में तीन बिंदु भी कह देते, तीन बिंदी भी कह देते हैं, मैं आत्मा बिंदी, मेरा बाप बिंदी, और अभी तक जो ड्रामा बीत गया उसको फुल स्टॉप बिंदी लगा देते हैं। और वैसे हम इसको ABCD भी कह सकते हैं, आत्मा, बाबा, कनेक्शन और ड्रामा। आत्मा, मैं आत्मा, परमात्मा के संतान, और शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा द्वारा मुझे सर्व संबंधों की पालना और प्यार दे रहे। सी फॉर कनेक्शन, संबंध, और डी फॉर ड्रामा। तो सार रूप में सत्य की समझ है। तो पहली एनर्जी है सत्य की समझ, दूसरी एनर्जी है पवित्रता, तीसरी एनर्जी है शांति, चौथी एनर्जी है सत्य एवं निस्वार्थ प्रेम, सत्य एवं निस्वार्थ प्रेम, चौथी एनर्जी है अतीन्द्रिय सुख, पांच छठी शक्ति है आनंद, और सातवीं जो एनर्जी है वो है आठ शक्तियां। ये सातों एनर्जी आत्मा की, जो जो हम देह अभिमान इन पांच विकारों के वश होकर कर्म करते हैं तो हमारे अंदर वो सातों एनर्जी का ह्रास होता रहता है, कम होती जाती, जिससे हमारे अंदर आसुरी संस्कार ना आसुरी आदतें पैदा होती है, जिससे आलस्य पैदा होता है। ब्राह्मणों का नंबर वन दुश्मन आलस्य है, अलबेलापन पैदा होता है, दूसरों के अवगुण दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, बदला लेने की भावना पैदा होने लगती है, शक अनुमान पैदा होने लगता है, चिंता भय पैदा होने लगती है। ये हमारी आदत बन जाती है, आलस्य हमारी आदत बन जाती है, अलबेलापन हमारी आज मनुष्यों की आदत है, आलस्य की, अलबेलेपन की, दूसरों के अवगुण देखने की आदत है। कोई हमसे गलत कर दे तो हमारे अंदर उसको माफ नहीं कर पाते हैं, हमें किसी पे निश्चय नहीं है, स्वयं पे भी निश्चय नहीं, दूसरों पे भी निश्चय नहीं होता है, और विश्वास भी नहीं है। इसकी बजाय हम शक संशय और अनुमान लगाना शुरू कर देते हैं। आत्मानी स्थिति का निशानी है बेफिक्र बादशाह, और हमें ये जो आदत पड़ती है आसुरी आदत पर संस्कार पड़ता है वो है चिंता, हर समय चिंता की आदत पड़ जाती है, हर समय डर लगता रहता है, और हम समय प्रेशर में रहते हैं, टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, मेरे हिसाब से हर काम होना चाहिए, परफेक्शन का प्रेशर, कंपटीशन कंपैरिजन की आदत पड़ जाती है, और ईर्ष्या द्वेष करने की आदत पड़ जाती है, ये आसुरी संस्कार पड़ जाते हैं। तो हर मनुष्य में ये है व्यक्त भाव, देवभान में रहना, देवाभिमान में रहना, देवभान के संबंध संपर्क में सोचते रहना, देवाभिमान के पदार्थों के बारे में सोचना, और देवाभिमान से पैदा होने वाले पांच आसुरी स्वभाव, और इससे पैदा होने वाले 10 आसुरी संस्कार आदतें, इसी में सारा टाइम चला जाता है। अब हम जो ब्राह्मण दिव्य ब्राह्मण जन्म हमें मिला, दिव्य ब्राह्मण जन्म मिला, तो दिव्य ब्राह्मण जन्म मिलने में हमको दिव्य दृष्टि मिल गई। दिव्य दृष्टि का अर्थ क्या है? दिव्य दृष्टि माना, दिव्य माना ये जो ज्ञान सत्य की समझ मिली है, ABCD हमको मिला है, इसके आधार पे स्वयं को जानना, देखना नहीं, दृष्टि काम से देखना होता है, पर जानना और मानना और वैसा चलना। देखने का मतलब क्या है? जानना, मानना और प्रैक्टिकल व्यवहार में वैसे चलना। तो हमें जो है दिव्य दृष्टि से जो हमें गिफ्ट मिली है ये, तो हमें समझ मिल गई हम सभी को कि हम देह नहीं, इस स्थूल देह नहीं, इस स्थूल देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा, मैं अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा, सात चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं का पुंज हूं। इन सात चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं से मैं आत्मा बुद्धि को, मन को और संस्कारों को चला रही हूं। मेरे ब्रेन में 100 अरब न्यूरॉन्स हैं, इन 100 अरब न्यूरॉन्स में ये एनर्जी जा रही है, आंखों में, नाक कान मुख में और त्वचा में, और शरीर के 8 अंग इसी से चल रहे हैं। पर हमको ये तक की समझ बाबा ने दी है कि बच्चे अभी हम 84वें जन्म में हैं, और ये आंख हमारा आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज हो गई, सातों एनर्जी लगभग नाक के बराबर हो गई, जैसे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है ना, तो हम चार्जर में लगा करके पावर हाउस में लगा देते हैं। तो अब चार्जर कौन है? चार्जर कौन है बताओ? शिव बाबा पावर हाउस है, और चार्जर कौन है? ब्रह्मा बाबा, राइट? तो चार्जर है ब्रह्मा बाबा, तो ब्रह्मा बाबा के माध्यम से हम शिव बाबा से जुड़ सकते हैं। क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा सर्व संबंधों की पालना और प्यार देता है, डायरेक्ट नहीं देता है, क्योंकि हमारे पास अपनी देह है और शिव बाबा के पास भी देह नहीं, देह दे नहीं, देह नहीं है, वो है ही अशरीरी, सदा ही अशरीरी है, सदा ही विदेही है, किंतु ब्रह्मा बाबा के पास देह थी और ब्रह्मा बाबा ने अपनी स्थूल देह को तो त्याग दिया किंतु उनके पास अभी सूक्ष्म शरीर है। अब सूक्ष्म शरीर क्या होता है? जो आत्मा की तीन सूक्ष्म शक्तियां हैं इनसे मिलकर के ही सूक्ष्म शरीर बनता है। ये जो हमारा मन बुद्धि यहां है, आत्मा यहां है तो बुद्धि भी यहां है, और मन सारे शरीर में फैला हुआ है। कहीं भी कुछ होता है हमको वहां संकल्प चलते हैं, उस चीज के भावना हमारी उसके प्रति बनती है, हमारा वृत्ति बदल जाती है उस शरीर के, कोई अंग में खराबी आ जाए, कुछ भी हो जाए, हमारी स्मृति में सदा वही समय रहता है, तो हमारा मन सारे शरीर में फैला हुआ है। और संस्कार हमारी ड्रेस है, संस्कार बाहर से दिखाई देते हैं, आदतें बाहर से दिखाई देती हैं, जो भी हमारी आदतें होती हैं बाहर से दिखाई देती हैं। मनुष्य शरीर छोड़ने के बाद ही, मनुष्य इस सूक्ष्म शरीर से निकल नहीं सकते, सूक्ष्म शरीर उनके पास भी है कि तो सूक्ष्म शरीर के साथ बाहर निकल नहीं सकते, मन बुद्धि से बाहर नहीं जा सकते, वो सिर्फ शरीर छोड़ने के बाद, मृत्यु के बाद ही आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ बाहर निकलती है और वो छाया के रूप में दिखाई देती है। किंतु हम ब्राह्मण, क्योंकि हमें दिव्य ब्राह्मण जन्म मिला है, तो हम इस सूक्ष्म शरीर हमको बनाना पड़ता है, सूक्ष्म शरीर हमारा है नहीं। सूक्ष्म का मतलब क्या? पवित्र। मनुष्यों का मन बुद्धि संस्कार पवित्र नहीं है, इसलिए मरने के बाद ही उनका वो सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि संस्कार अलग होते हैं और वो छाया के रूप में दिखाई देते हैं। किंतु हम ब्राह्मणों को ये पावर है कि हम इस सूक्ष्म शरीर के साथ, बेसिकली मन सूक्ष्म शरीर है, दिव्य बुद्धि उसका इंजन है, और संस्कार कौन से वाले? हम ब्राह्मणों के नियम मर्यादाएं, संपूर्ण पवित्रता, जितनी जितनी पवित्रता हमारी संपूर्णता, मन वचन कर्म संबंध संपर्क और स्वपन तक जब पवित्र जितने होते जाते हैं उतना हमारी ड्रेस चमकीली होती जाती है। शुद्ध सात्विक भोजन, शुद्ध सात्विक अन्न, ये आदत संस्कार पड़ जाए हमारा, ये हमारी ड्रेस है, उतनी हमारी चमक आती जाती है। सत्संग, सदा बाबा और मुरली का संग, सत्य दो ही चीजें हैं, सिर्फ बाबा सत्य है और बाबा की मुरली सत्य है, निरंतर इसका संग करते रहना, यही हमारी ड्रेस है। और दैवी गुणों की धारणा, ऐसे तो 36 दैवी गुण है किंतु तो 3 विशेष गुण चाहिए बाबा से बैटरी चार्ज करने के लिए, अवैक स्थिति बनाने के लिए। पहली धैर्यता, दूसरा गंभीरता, तीसरी सहनशीलता। धैर्यता, पेशेंस, 63 जन्मों के पाप कर्म है उनको भस्म करना है, तो पेशेंस चाहिए, एक जन्म के नहीं है और बहुत मेहनत लगती है। दूसरा सीरियस होकर के, गंभीर होकर के कार्य करना है। तीसरा सहनशीलता, इस रास्ते में बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, कहीं ग्लानी होगी, कहीं कुछ होगा, कहीं ऊपर नीचे बहुत सारे मान अपमान की फीलिंग आएंगी, बहुत सारी बातें, बहुत सारे पेपर आने वाले हैं, इसमें बहुत सहन करके समाना पड़ेगा। सहनशीलता माना सहन करके समाना, खाली सहन नहीं करना, सहन तो दुनिया में भी करते हैं, सहन करके समाना पड़ेगा, राइट? तो ये हमें देखना पड़ेगा। तो जितना, तो ये चीज हमें करनी पड़ेगी, तो जितना जितना हम ये अभ्यास करते जाएंगे हमारा मन मन शुद्ध होता जाएगा और दिव्य बुद्धि रूपी एक्टिव होती, जितना दिव्य दृष्टि दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट एक्टिव होती जाएगी। और संस्कार, तो 4 मर्यादाएं मुख्य हैं, पवित्रता, शुद्ध सात्विक भोजन, सत्संग और दैवी गुणों की धारणा, और पावरफुल अमृत वेला। दूसरा मुरली, क्लास में आके बाबा की मुरली सुनना। तीसरा सारा दिन जो मुरली पे अटेंशन, जो बाबा ने कहा उसका सारा दिन मनन चिंतन मंथन सिमरन चलते रहना, उसको बार बार रिवाइज और रियलाइज करते रहना। और चौथा सोने के पहले, जो कल भी बाबा ने मुरली में कहा, सोने के पहले सच्चे सच्चे बाबा को सारा समाचार देना, बुद्धि और मन खाली करके सो जाओ, बाबा के साथ सो जाओ। तो उसे कहते वेंटिलेशन, अपने दिल मन में, शरीर में, परिवार में, सेवा में, जो कुछ भी ऊपर नीचे हुआ, सच्चा सच्चा समाचार बाबा को देना। ये चार, ये जब हमारी आठ आदतें पड़ जाती ना, तो वो हमारी ड्रेस बनती जाती है सूक्ष्म शरीर की, और धीरे धीरे सूक्ष्म शरीर बनता है। जितना जितना सूक्ष्म शरीर में जितना शुद्ध और पवित्र बनता जाता है, उतना जल्दी हम उतना दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट एक्टिव होती जाती है। तो दिव्य बुद्धि क्या है? इंजन मन, सूक्ष्म शरीर, और ये ड्रेस हमारी क्या है? लाइट का सूक्ष्म ड्रेस हमारी नियम और धारणा है। अब सूक्ष्म वतन में मुझे सूक्ष्म वतनवासी बनना है, इसके लिए मुझे क्या चाहिए? कहीं भी जाए, किसी देश में जाना हो, आपको स्विट्जरलैंड जाना हो, तो कैसे जाएंगे? पहले पासपोर्ट निकालना पड़ेगा, या वैसे ही पहुंच जाएंगे? पासपोर्ट चाहिए, फिर वीजा चाहिए, फिर और क्या चाहिए? टिकट भी चाहिए, और फिर स्विट्जरलैंड में रहने के लिए पैसा भी चाहिए। वहां कुछ खर्चा करेंगे रहने के लिए, खाने पीने के लिए पैसा भी चाहिए, चार्जेस चाहिए ना। तो हमें ये, अब ये चार चीज कैसे हमारे पास हो? तो पासपोर्ट क्या है हमारा? ये बाबा की मुरली। जितना जितना हम बाबा की मुरली का मनन चिंतन मंथन स्मरण करते जाते हैं, तो हमारा पासपोर्ट एक्टिव हो जाता है। कोई भी ब्राह्मण अगर सूक्ष्म वतनवासी बनना चाहता है, व्यक्त से अव्यक्त बनना चाहते हैं, ब्रह्मा बाबा को भी क्या था? मुरली से बहुत प्यार था। तो सारा दिन मुरली का जो मनन चिंतन मंथन करते जाते हैं, तो वो उनको पासपोर्ट मिलता जाएगा। जो मुरली का मनन चिंतन नहीं करते हैं, दुनिया भर की बातें पढ़ते सुनते हैं, वो कभी सूक्ष्म वतन में का अनुभव नहीं कर सकते। विजुलाइज कर सकते हैं, पर रियलाइज नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, वीजा कौन सा है? वो है पवित्रता। जितना जितना हम संपूर्ण पवित्रता को धारण, देखो वीजा में भी बहुत कैटेगरी होती है। एक तो जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का वीजा होता है, फिर अब जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, स्टेट गेस्ट होते हैं, उनका वीजा अलग होता है, और फिर जो आम आदमी होते हैं उनका वीजा अलग होता है। तो ऐसे ही पवित्रता की जितनी हमारी डिग्री बढ़ती जाएगी, उतना हमारा वीजा क्या होगा? टॉप क्वालिटी का बनता जाएगा। रास्ते में कोई चेकिंग नहीं होगी। तो वीजा बहुत जरूरी है अगर हमें सचमुच में सूक्ष्म वतनवासी बनना है, अव्यक्त बनना है, तो वीजा हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए, राइट? तीसरा जो है वो टिकट है। टिकट क्या है? पवित्रता जितनी आती जाएगी, उतना उतना क्या होता जाएगा हमारे अंदर? शांति और सच्चा प्यार पैदा होता जाएगा। शांति क्या चीज है? 90% विचार हमारे पास के, जो हमारे बचपन से लेके अभी तक जो हमें साइकोलॉजिकल और इमोशनल हर्ट्स हुई हैं, बचपन से लेके स्पेशली 4 से 11 साल की उम्र तक, जो भी हमें किसी भी रूप में हमको कोई बचपन में कोई, मान लें माता पिता भी कोई पार्शलिटी कर देते हैं दो भाई बहनों के बीच में। अगर आप बहन हैं तो भाई को पहले खिला देंगे, आपको कम खिलाएंगे। जब दो भाई भी हैं तो एक भाई को थोड़ा ज्यादा दिया, आपको कम दिया, या आपको उसको पहले दिया, आपको बाद में दिया, तो वो भी बच्चे को, छोटे बच्चे को फील होता है। जो भी घटनाएं बचपन से घटती हैं, स्कूल में, कॉलेज में या घर में, वो सब रिकॉर्ड हो जाती है, और बच्चा उसी चश्मे से सब सारी दुनिया को देखता है। तो साइकोलॉजिकल इमोशनली कहते हैं 4 से 11 साल की उम्र बहुत ही नाजुक होती है। सारी बीमारियों की जड़ भी इसी समय शुरू होती है, चाहे हार्ट की बीमारी हो, चाहे ब्रेन की हो, चाहे पेट की बीमारी हो, इसी समय शुरू होती है। डायबिटीज हो, कोई बीमारी भी हो, तो वो जो समय है बहुत टेंडर एज होती है। तो ये हमारी साइकोलॉजिकल इमोशन, और आगे भी भविष्य में 11 साल 12 साल के बाद भी जो घटना है हमारे, अब तक उसी रंग से हम दुनिया को देखते हैं। तो 90% विचार हमारे वहीं से आते हैं, इससे थॉट स्पीड बहुत फास्ट रहती है। किंतु बाबा ने हमें सिखाया कि अभी तक जो कुछ भी हुआ तुम्हारे अपने कर्मों का फल है। अभी तक जो कुछ हुआ और जो हो रहा है तुम्हारे अपने किए हुए कर्मों का फल है। जो तुमने बोया था वही तुम्हें काट रहे, और परमात्मा उसी अनुसार तुम्हें डायरेक्शन दे रहा है। दूसरा भी मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको गलत व्यवहार कर रहा है, वो भी बाबा की डायरेक्शन में कर रहा है ताकि मेरा बच्चा जो है इसका हिसाब तब चुकते हो जाए और ये बिना सजा के वापस घर चले। जैसे कोई बाप होता है, कोई बच्चा कहीं स्कूल में पढ़ रहा होता है, कॉलेज में, हॉस्टल में रह रहा होता है, तो बाप जाता है, जब उसको लेके आना होता है तो उसका जो भी हिसाब किताब है ना, दोस्तों को या दुकानदार, पास में दुकानदार है, जो भी कोई हिसाब किताब चुकतू करा के आता है, जिसका भी अकाउंट है चुकतू, ऐसे ही बाबा हमको यहां से जाने से पहले जो भी हमारे हिसाब किताब किसी के साथ है, जिनके साथ आप रहते हो, जो आपके माता पिता हैं, भाई बहन हैं, पति पत्नी हैं, पड़ोसी हैं, दोस्त हैं, वो आपके बहुत जन्मों के संबंधी हैं। वो आपके संबंधी क्यों बने? लेने और देने के लिए। जो आपने लिया हुआ उनसे वो ब्याज के साथ उनको वापस करना पड़ेगा, और जो उनको उन्होंने आपसे लिया हुआ है उनको देना पड़ेगा। ये संबंध कुछ और नहीं है, हमारे कर्मों के हिसाब किताब है। दुख दिया हुआ है तो दुख मिलेगा, सुख दिया है सुख मिलेगा। मैं तो आपको 100 साल का हिसाब सुनाता हूं, हमारा तो 25 साल का हिसाब किताब है। मान लो कोई 100 साल पहले कोई भाई था, कोई व्यक्ति था, और उससे आपने, आपका दोस्त था, 10 रुपए उधार लिया था 100 साल पहले, पिछले जन्म में मान लीजिए, और किसी कारणवश दे नहीं, वापस नहीं कर पाए, वो दोस्त इस जन्म में आपका बेटा बनेगा इस जन्म में आके, या कोई ना कोई संबंधी बिजनेस पार्टनर बनेगा, और 100 साल के बाद उसको क्या कितना देना पड़ेगा आपको, ब्याज कितना हुआ? 100 साल का ब्याज एक बार में लगाया था 4,18,35,040 रुपये बनता है। सोचो आप, 100 साल पहले किसी को आपने एक बार इंसल्ट की थी, इस जन्म में कितनी बार इंसल्ट होगी आपकी, कितनी बार होगी? इसमें ताली बजाने की बात है क्या? कम से कम 1,000 बार तो होगी, नहीं होगी? और वो इंसल्ट करने वाला कौन होगा? वही आपका दोस्त जो इस जन्म में आपका रिश्तेदार आके बना, बेटा बना है, या पति बना है, या पत्नी बनी है, या सास बनी है, नहीं, वही आपको रोज इंसल्ट करेंगे। आप अच्छा अच्छा करेंगे तो भी आपका अपमान होगा। आपने किसी को साथ एक बार गाली, किसको अब्यूज किया था, इस जन्म में कितनी बार आपको 10,000 बार गाली खानी पड़ेगी, सुबह शाम बिना गलती किए भी खानी पड़ेगी। तो जो भी कुछ हमारे साथ हो रहा है ना, वो अपने किए कर्मों का फल है, कोई दोषी नहीं है इसके लिए। भगवान यही चाहता है कि हमारे बच्चे, मेरा बच्चा पूरा हिसाब का चुप करके चला जाए, ताकि इसको सजा ना खानी पड़े, राइट? तो इसलिए अभी तक जो कुछ हुआ उसको फुल स्टॉप लगाना बाबा हमको सिखाते हैं। फुल स्टॉप कब लगा सकते हैं? जब बाबा साथ हो। तो अगर बाबा सर्वसंबंध साथ नहीं है तो हम फुल स्टॉप नहीं लगा सकते। सारी दुनिया कहां फंसी पड़ी है? सारी दुनिया इसी मैट्रिक्स में, ड्रामा में फंसी हुई है। इसने वैसा तैसा क्यों किया, मैंने तो अच्छा किया, ये ऐसा क्यों करती है, ये ऐसा क्यों करता है, ये मेरे को इतना तंग क्यों करते हैं, मेरा जीना क्यों हराम किया इन्होंने, मेरे से इतनी ईर्ष्या क्यों करते हैं, नहीं, नींद क्यों नहीं आती है, ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है, डायबिटीज क्यों बढ़ती है, हार्ट की आर्टरी ब्लॉक क्यों होती है, हार्ट अटैक क्यों आता है, पेट में हाजमा क्यों नहीं होता है, कब्जी क्यों होती है, सांस की बीमारी क्यों होती है, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द क्यों होता है? इसी कारण से। मेरे साथ ऐसा हुआ, उसने मेरे को ऐसा किया, यही सोच हम फुल स्टॉप लगा नहीं पाते हैं। और यही व्यक्त और अव्यक्त में डिफरेंस है। जो ड्रामा को फुल स्टॉप लगाना जान गया, एक सेकंड से भी कम समय में ड्रामा को फुल स्टॉप लगा, जो हुआ अच्छा हुआ, मेरे अपने किए कर्मों का फल है, फुल स्टॉप लगा के अपने सत्य स्थिति में टिक करके, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के, उस परम सत्य परमात्मा से कंबाइंड होकर कर्म करता है, इसको शांति कहते हैं। 90% विचार कट हो जाते हैं। अगर 40 विचार आ रहे तो सिर्फ 4 ही विचार रह जाते हैं। 4 विचार कौन से रह गए? ABCD, आत्मा, मैं आत्मा, परमात्मा की संतान, सर्व संबंध बाबा से, बैटरी चार्ज वहां से होती है और बाकी सब बैटरी डिस्चार्ज करने वाले। मुझे याद आता है दादी प्रकाशमणि जी की, मैं उनका बहुत समय दादी के साथ रहा, उनका पर्सनल फिजिशियन रहा, दादी के अंग संग बहुत समय रहा, और दादी जी सुबह सुबह मेरे को कहा, दादी ने मुरली के बाद रोज मेरे पास कम से कम 5 मिनट तो बैठा ही आके, पांडव भवन में जब थे तो दादी के पास जाता था, कई बार 5 मिनट के बाद 10-15-20 मिनट भी बैठते थे, तो दादी कभी कभी मुझे एकांत में जब दादी होती साथ में कोई नहीं होता, दादी मुझे कोई ना कोई बात सिखाने के लिए पूछती थी। एक बार दादी ने कहा गुप्ता जी इंचार्ज किसे कहते हैं? मैं दादी इंचार्ज माना हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जो हमारे यहाँ उस समय पांडव भवन में भी कुछ 48 डिपार्टमेंट थे। तो दादी ने कहा दादी हमारे यहाँ डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं ना, ऐसे हमारे हॉस्पिटल में भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट हैं, उनके इंचार्ज हैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उनको हेड ऑफ द। दादी कहते वो नहीं, मुझे रियल मीनिंग बताओ, बाबा ने जो बताया वो बताओ। तो मैंने कहा दादी आप बताओ। दादी ने कहा इंचार्ज माना जो इन रह के अपने आप को चार्ज करता रहे, अंदर रह करके अपने आप को चार्ज करता रहे परमात्मा के साथ, पावर हाउस से निरंतर चार्ज करता रहे अपनी बुद्धि को, मन को, संस्कारों को, सातों चैतन्य जो सात आत्मा की ऊर्जाएं है ना उससे भरपूर करता रहे, बुद्धि को भरपूर करता रहे ज्ञान से, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुखानंद और शक्तियों से, मन को भरपूर करता रहे, संस्कारों को भरपूर करता रहे, अपनी आंखों को भरपूर करता रहे, अपने नाक को, कान को, मुख को और पूरे एक एक सेल को, एक एक अंग को भरपूर करता रहे, उसे कहते हैं इंचार्ज। और जो अपने साथ जो साथी हैं काम के घर में या बाहर, हम कम से कम अपने शरीर के तो इंचार्ज हैं, अपने मन बुद्धि संस्कार के तो इंचार्ज हैं, अपने शरीर को चलाने के इंचार्ज तो हम ही हैं, तो इसको चार्ज करते रहो, इसको बोलते हैं इंचार्ज। और जो हमारे साथ में है घर में है, मान लीजिए आप घर में बड़े हैं, जैसे माँ भी इंचार्ज होती है बाप भी इंचार्ज होता, तो अपने घर में बच्चे हैं और भी मेंबर्स हैं, उन सबको भी पवित्रता, शांति, प्रेम, सुखानंद शक्तियों से भरपूर करते रहे। और जो अगर आप किसी कहीं काम करते हैं तो जिस भी डिपार्टमेंट के आप इंचार्ज हैं या जिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जो भी आपके संबंध संपर्क में आए उनको भी पवित्रता, शांति, प्यार, सुख और आनंद की करंट भरते रहे। आपका व्यवहार पवित्रता, ज्ञान से, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुखानंद से भरपूर होना चाहिए, उसको बोलते हैं इंचार्ज। अदरवाइज हम कौन है? आउट चार्ज। माना अगर आंख दिखा करके, गुस्सा करके दूसरों को कंट्रोल करते हैं तो उसको बोलते हैं आउट चार्ज। ये दादी जी ने मुझे सिखाया उस दिन। तो हमें इंचार्ज बनकर के रहना है। तो जैसे मैं बात कर रहा था कि दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि, तो सूक्ष्म शरीर कैसे बनेगा? जितना हम अपने को आत्मा समझ करके, दिव्य दृष्टि माना जितना हम अपने को स्थूल देह ने स्थूल देह को चलाने वाली मैं अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा, सात चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं का पुंज, जो सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जा मेरी कम हो गई है, बैटरी डिस्चार्ज हो गई लगभग ना के बराबर हो गई एनर्जी, ना ज्ञान भी खत्म हो गया लगभग, एबीसीडी खत्म हो गई है, पवित्रता कम हो गई, खत्म हो गई लगभग, शांति है ही नहीं, सारा टाइम पास्ट के विचार, भविष्य की चिंता, पास्ट का चिंतन चलता है, भविष्य की चिंता चलती रहती है, चिंता लगी रहती है, पर प्यार सच्चा प्यार नहीं रहा है, अतिंद्रिय सुख नहीं रहा है, आनंद नहीं रहा है, हम अभी सेंसुअस प्लेजर में खो गए, इंद्रिय के सुख में खो गए हैं, देखने का सुख, पढ़ने का सुख, सुनने का सुख, बोलने का सुख, खाने का सुख, पीने का सुख, छूने का सुख, दुनिया के इन्हीं में खोए हुए हैं। और सारे रोगों का कारण यही है, हम देखते रहते हैं आंखें खराब होती हैं, पढ़ते रहते हैं कुछ भी पढ़ते रहते हैं घंटों घंटों, आज तो मोबाइल में लोग लगे रहते हैं, कानों में कुछ सुनते रहते हैं, खाते रहेंगे पेट भर जाएगा तो भी खाते रहते हैं, पेट भर गया तो भी पीते रहते हैं। तो ये इंद्रियों का सुख हमको बीमार करता है। और जितना सुपर सेंस अतिंद्रिय सुख की अनुभूति आज है ही नहीं लोगों को, आनंद की अनुभूति नहीं है, आनंद लोग आजकल क्या फिल्मों में देखते हैं और चीजों में, गलत गलत कामों में आनंद ढूंढने की कोशिश करते हैं, जहां नहीं है, आठों शक्तियां नहीं है, आज जिम में जाके आज लोग फिजिकल एक्सरसाइज करके जिम शक्तियां पैदा करने की कोशिश करते हैं, तो सातों एनर्जी खत्म हो गई है आज के समय में। तो ये हमारी स्थिति ऐसी हो गई है, तो ऐसे समय में हम बैटरी चार्ज करने की आवश्यकता है, और पावर हाउस शिव बाबा है। तो ब्रह्मा बाबा को हम फॉलो करें कि ब्रह्मा बाबा ऐसी एक आत्मा थे, ऐसा एक बाबा ने एक ऐसी रचना, नंबर वन आत्मा, जिसने परफेक्ट रूप में शिव बाबा से कंबाइंड, निरंतर कंबाइंड रहा और निरंतर कंबाइंड होकर उन्होंने परफेक्ट अपने आप को अव्यक्त बना लिया। जब से बाबा ने, दादियों से मैंने बहुत, दादियों से भी, दादियों से बहुत रूढ़िहान होती थी और दादियां बताती थी कि कभी भी हमने ब्रह्मा बाबा को व्यक्त रूप में देखा ही नहीं, 1936 से नहीं देखा, हमेशा बाबा को फरिश्ता, अव्यक्त फरिश्ते के रूप में देखा, उनका चाल चलन, उनका व्यवहार एकदम, जो बाबा ने कहा ना चलन और चेहरे से, चेहरे और चलन से, चेहरा माना क्या? मन, कहते हैं फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, मेरे मन में क्या है वो चेहरे से दिखाई देता है। वो जो मन में जो चार चीज कहते हैं, मन माने टीम, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड मेमोरीज, संकल्प, भावना, वृत्ति, वृत्ति माने भाव और स्मृति। जो मन में होता है ना, संकल्प चल रहे होते हैं, भावना होती है, भाव हमारा वृत्ति होती है, दृष्टि होती है, और जो स्मृतियां होती है चेहरे से दिखाई देती है। तो चेहरा माना मन और चलन माना कर्म। मेरा देखना, मेरा पढ़ना, मेरा सुनना, मेरा बोलना, मेरा खाना, मेरा कुछ भी कर्म करना, वो चलन है। तो चेहरे और चलन से दिखाई दे, तो वो ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिकल करके दिखाया। तो ब्रह्मा बाबा को हमें फॉलो करते हुए, ब्रह्मा बाबा के फुटस्टेप पे चलते हुए मुझे अपनी बैटरी को चार्ज करना है। तो ये अपने आप को बार बार रिवाइज करना है, मैं स्थूल देह नहीं, स्थूल देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा, सात चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं का पुंज, परम धाम निवासी, अति सूक्ष्म परम सत्य, परम सत्य माना सदा ही सोल कॉन्शियस है बाबा। हम आत्मा आधा क्लब सोल कॉन्शियस है, आधा क्लब सत्य है, आधा क्लब असत्य हो जाए, आधा क्लब देह अभिमानी बन जाते। परम चैतन्य सदा ही जागती ज्योत है शिव बाबा, किंतु हम आधा क्लब जागती ज्योत है और आधा क्लब हम आत्माएं उंझाई, हमारी ज्योति कम हो जाती है, इसलिए उसको कहते परम परम ज्योति, परम चैतन्य, परम ज्योति, परम परम सत्य, परम चैतन्य, परम ज्योति बिंदु, सात चैतन्य आत्मिक ऊर्जा का पावर हाउस है वो, परम है वो। परम मीन्स, परम मीन्स उसके बराबर, उसका पावर हाउस, इसका कोई अंत नहीं है, असीम, अनलिमिटेड, उसकी ऊर्जा कभी कम नहीं होती है, क्योंकि कभी देह में आता ही नहीं, उसका अपना शरीर नहीं। उस पावर हाउस से मैं कंबाइन, सर्व संबंधों के महिंसार वाली याद, बाबा ही मेरा संसार है, मेरे हर संकल्प में बाबा, हर बोल में बाबा, हर कर्म में बाबा, हर संबंध संपर्क मेरा बाबा, और स्वप्न में भी बाबा ही आए, ऐसी पावरफुल मेरी याद बाबा से हो। तो ऐसी बाबा की हमारी याद क्या करती है, ऐसा अगर हम बाबा को याद करते हैं तो आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती जाती है। तो इसमें हमें ये क्या करना है, जो बाबा का जो पहला पहला संस्कार था, बाबा ने जो पहली पहली धारणा थी वो अंतर्मुखता की थी। दादियां बताती हैं, स्पेशली निर्मल शांत दादी बताती थी, और पुट्टू दादी हमारे पास 3 साल रही थी, आखिरी में ट्रॉमा सेंटर में दाखिल रही, उनकी हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी, तो उनको 3 साल फिर हमारे पास ही रही, बॉम्बे से इधर आ गई थी। तो शाम को हम रोज सुबह राउंड तो लेते थे, शाम को मैं स्पेशली आधा घंटा कभी 45 मिनट उनके साथ बैठते थे, मुझे सारी बाबा की बातें बातें होती थी। तो दादी कहती थी कि बाबा तो 1928 से ही अंतर्मुखी रहने लगे थे, कभी कश्मीर चले जाते, कभी उनको एकांत में बैठना बहुत पसंद था, तो बाबा अंतर्मुखी बन। अंतर्मुखी का मतलब क्या है, ये जो अभी जो स्थिति बताई ना, मैं स्थूल देह नहीं, स्थूल देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा, परम धाम घर में परम धाम परम पिता परमात्मा शिव बाबा से कंबाइंड, और ये स्थिति में कंबाइंड होकर सोचना, निर्णय करना, देखना, पढ़ना, बाबा से कंबाइंड होकर सुनना, बाबा से कंबाइंड होकर सांस लेना, बाबा से कंबाइंड होकर खाना, बाबा से कंबाइंड होकर पीना, बाबा से कंबाइंड होकर बोलना, बाबा से कंबाइंड होकर व्यवहार में आना। तो अगर मुझे व्यक्त से अव्यक्त बनना है तो अंतर्मुखी बनना पड़ेगा। तो ये पहला पहला कदम था। जब अंदर से हमारे अंदर अंतर्मुखता आएगी, अंदर का सुख मिलने लगेगा, तो बेहद की वैराग्य वृत्ति आएगी। तो जब बेहद की वैराग्य वृत्ति आएगी तो क्या होगा, तो अनासक्त वृत्ति आएगी। जब अंदर का सुख मिलने लगता है ना, तो बेहद की वैराग्य वृत्ति आ गई, तो फिर अनासक्त माना मैं ये देख लूं, ये देखने जाऊं, वहां घूमने जाऊं, उससे मिलूं, ये खाऊं, अनासक्त वृत्ति आएगी। नहीं तो हमारा अव्यक्त कौन बनाता है, हमको आसक्ति में कौन लाता है, यही बाहर के साधन, मोबाइल है ना। आज सबसे सबसे बड़ा टॉक्सिक क्या है, ये मोबाइल। मोबाइल हमको क्या करता है, हमारी फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, हमारी जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं नॉर्मली, हमारी 13 से 18 फ्रीक्वेंसी, हमारी 15 की फ्रीक्वेंसी होती है नॉर्मली। जब 20 की फ्रीक्वेंसी हो जाती है तो उसको जल्दीबाजी कहते हैं, जब 25 हो जाती है थॉट स्पीड, एक मिनट में 25 थॉट्स, तो उसको चिंता कहते हैं। जब 30 थॉट की स्पीड, तो चिड़चिड़ापन आने लगता है। 35 हो जाता है तो गुस्सा आने लगता है, ये हमने डीआरडीओ से उनकी रिसर्च की ईजी के साथ। 40 हो जाते तो और जोर से गुस्सा आने लगता है, और 45 में तो पागल हो जाते हैं, हमें पता नहीं लगता हम क्या सोच रहे हैं, या तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया हो जाता है। और जितना हम मेडिटेशन करते हैं, एबीसीडी करते हैं, उतना हमारी थॉट स्पीड कम होती जाती है। अब जैसे हम मैं अपने को एबीसीडी का अभ्यास करता हूं तो क्या होता है, मेरी थॉट स्पीड 8 हो जाती है। इसको वैसे हम अल्फा रिदम भी कहते हैं, इसको शांति कहते हैं। 6 हो जाती है तो उसको प्यार का मतलब क्या है, शांति माना पास के विचारों को फुल स्टॉप लगा के और अपने सत्य में टिके परम सत्य बाप से कंबाइन होकर कर्म करना, इसे कर्मयोगी भी कहते हैं। और प्यार माना जो कुछ भी हमारे आस पास हैं, लोग या व्यक्ति हैं, घर में या ऑफिस में या कहीं दुनिया में, उनको उनके हर रोल के साथ दिल से सम्मान से स्वीकार करना, उनकी बराबर पालना करना, गाली देने वाले की भी बराबर पालना करना, महिमा करने वाला गाली दे, दोनों को बराबर पालना देना। जैसे ब्रह्मा बाबा का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, ब्रह्मा बाबा का जो महिमा करते थे और जो ब्रह्मा बाबा को तंग करते थे, जैसे बाबा का दिखाते हैं ब्रज कोठी के पीछे साधु था तो उठते ही गाली देना शुरू करता था, और बाबा के बच्चे कहते बाबा इसको मेरे से भगा दें, नहीं बाबा कहता नहीं बच्चे वो मेरा परम मित्र है। तो बाबा जब जैसे भोजन तैयार होता था बाबा उसको भोजन पहुंचवाते थे, उसको भोजन देख किया। तो बाबा ने कभी ये नहीं किया, बाबा के बच्चे सब तरह के बच्चे हुए, जो बच्चे बहुत अच्छे थे और कुछ अच्छे बच्चे भी अगेंस्ट हो गए, डिफरेंट पार्टीज बनाई लोगों ने, फिर भी बाबा ने सबको बराबर प्यार दिया। तो ऐसा सब इसको बोलते प्यार। बाबा का प्यार कैसे, अंग्रेजी में कहूं तो अनकंडीशनल डिग्निफाइड रेस्पेक्टफुल एक्सेप्टेंस एंड केयर फॉर ईच एंड एवरी ह्यूमन बींग ऑन द प्लेनेट। विश्व में हर आत्मा को उसके हर रोल के साथ दिल से सम्मान के साथ स्वीकार करना, उसकी बराबर पालना करना, ऐसा प्यार दिल को चाहिए होता है। तो ये प्यार जितना शांति, तो पवित्रता से शांति आती है, पवित्रता जब आ जाती है तो फुल स्टॉप लगाना सहज हो जाता है, फुल स्टॉप लग जाता है तो शांति आ जाती है। जब शांति थॉट स्पीड 8 हो जाती है तो 6 माना हम सबको स्वीकार करने लगते हैं, और 4 माना खुशी, ABCD ड्रामा, जो हुआ अच्छा हुआ, अपने सत्य में टिके परम सत्य बाप से कंबाइंड हो जाते हैं तो खुशी आ जाती है। 3 माना अतिंद्रिय सुख। तो ये व्यक्त क्या है, 4 से अधिक जो है वो व्यक्त है इस दुनिया में, व्यक्त माना 4 से अधिक विचार चलने वाली दुनिया है, और 4 से कम विचार वाली दुनिया क्या है, अव्यक्त है। 3 माना अतिंद्रिय सुख, जब बाबा से पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा, तो अतिंद्रिय सुख की अनुभूति होती है, सर्व प्राप्ति संपन्न स्थिति की अनुभव होती है, संतुष्टता अनुभव होती है, इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति अनुभव होती है। और जब हम बाबा की गोद में समा जाते हैं, मैं और बाबा सर्व संबंधों के महीन सार वाली याद, तो हम बाबा के क्या हो जाते हैं, लवलीन स्थिति, समा गए, है ना, बाबा और जैसे मैं एक हो गए, नदी सागर में जाके सागर बन गई, मास्टर सागर बन गए, तो वो स्थिति आनंद की स्थिति है। तो ये जो है, ये स्थिति जो है कैसी स्थिति है, अव्यक्त स्थिति है। अतिंद्रिय सुख को उसमें, अतिंद्रिय सुख में भिन्न भिन्न संबंध ना, माता पिता शिक्षक सतगुरु बंधु सखा साजन सज्जन, इसलिए इसको बोलते हैं स्वीट साइलेंस, भिन्न भिन्न संबंधों की अनुभूति होना, अतिंद्रिय सुख की अनुभूति होना। और आनंद जो है वो डीप साइलेंस है, आत्मा परमात्मा के प्यार में लवलीन हो गई, नदी सागर में समा के सागर हो गई, तो ये स्थिति है वो है, ये जो स्थिति है वो अव्यक्त स्थिति। हम देह में हैं, देह में रहते हम विदेही हैं, हम यहां रहते बाबा के गोद में हैं, बाबा के भिन्न भिन्न संबंधों की अनुभूति कर रहे हैं, ज्ञान सागर में समाये हुए हैं, पवित्रता के सागर में समाये, शांति के सागर में समाये हुए हैं। और शांति रियल में क्या होती है, बोलने की बात नहीं है, रियल शांति क्या होती है वो महसूस होती है। इतनी थॉट स्पीड कम हो जाती है, इतना विचारों का प्रवाह कम हो जाता है कि बस बाबा और मैं, बाबा और मैं, ड्रामा का फुल स्टॉप और बाबा, उस शुद्ध शांति में गए हम, हुए प्यार बाबा के साथ, प्यार में ना हम बाबा की उस अनलिमिटेडनेस को, बेहद को महसूस कर रहे होते हैं, कि बाबा जैसे मुझे स्वीकार, बाबा बाबा और मैं एक एक हो गए हैं, ऐसा फीलिंग आती है। अतिंद्रिय सुख, आनंद की रियल में फीलिंग आना। और जब ऐसी आनंद की स्थिति आती है ना, तो हमारी तीसरी आंख खुल जाती है, जिसको हम विवेक कहते हैं, थर्ड आई ऑफ विजडम कहते हैं। सत्य को परखने की शक्ति जागृत हो जाती है। सत्य को परखने की शक्ति माना, अब मुझे एक ही बाबा दिखाई देता है, यही सत्य है। एक ही सहारा, एक बल एक सहारा, एक बल एक भरोसा, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तब वो सत्य को परखने की शक्ति जागृत होती है। नहीं तो हम सोचते नहीं, इससे कुछ मिल जाएगा, इससे कुछ मिलेगा, इससे कुछ मिलेगा। नहीं तो हम अपने मन बुद्धि बुद्धि भटकती रहती है, कभी किसी संबंध में, कभी किसी संबंध में। जब एक बार आनंद उस लवलीन अवस्था का अनुभव कर लिया ना हमने, तब सत्य को तीसरी आंख तब खुलती है। जब सत्य को परखने की शक्ति जागृत हो जाती है, तो फिर दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट एक्टिव हो जाती है। तब दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट एक्टिव होती है। तो ये प्रोसेस है। तो पहले क्या करो, बार बार जितना अभ्यास करें हम बाबा, इसलिए बार बार ड्रिल कराते हैं, साकारी आकारी निराकारी की ड्रिल कराते हैं। हर बार अव्यक्त मुरली के बाद बाबा एक मिनट की ड्रिल कराते हैं, सेकंड में शरीर हो जाओ। हमारा ट्रैफिक कंट्रोल भी बार बार होता है, सुबह 3:30 बजे, फिर 6:30 बजे होता है ना बार बार, फिर 7 बजे, फिर 10:30 बजे, 12 बजे, क्यों होता है? घंटे घंटे में भी एक मिनट के लिए गीत बजता है शांति का। ये हमें प्रैक्टिस कराने के लिए, अशरीर स्थिति का अभ्यास कराने के लिए। तो बार बार ये अभ्यास करने की बहुत आवश्यकता है। तो जितना अधिक हम ये अभ्यास करते जाए, तो बार बार ये अभ्यास करने से क्या होगा, हमारी दिल सच्ची और साफ। बाबा कहता है अंतर्मुखी होने से हमारी दिल सच्ची और साफ होगी। सच्ची साफ का मतलब क्या है? जिस सच्चे दिल माना, जिस दिल में बाबा के सिवा कोई दूसरा कोई ना हो। जब बाबा को, बाबा ही मेरे दिल में बैठा। दिल माना चेतना, कॉन्शियसनेस। बुद्धि का 4 एस्पेक्ट है, पहला दिल है, दिल में बाबा है। माना मेरी चेतना, बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। मुझे बाबा से सर्व संबंधों के अनुभव की अथॉरिटी है। मैं सर्व संबंधों से बाबा को अनुभव करता हूं, बाबा को यूज करता हूं, और ड्रामा में जो भी कुछ होता है उसको फुल स्टॉप लगा देता हूं। पवित्रता का सागर है बाबा, अंदर से फील होता रहे। शांति का सागर, सत्य प्रेम का सागर, अतिंद्रिय सुख का सागर, आनंद का सागर। तो जब आनंद को उसको महसूस करने लगते हैं, तो फिर हमारी तीसरी आंख खुल जाती है, सत्य को प्रकट शक्ति जागृत होती है। तो दिव्य यथार्थ निर्णय करने की शक्ति, दिव्य बुद्धि एक्टिव हो जाती है। और इस प्रोसेस में दिल को सच्चा साफ माना, जिस दिल में बाबा की मुरली के अलावा कुछ और ना हो, बस बाबा की मुरली ही श्रीमत है। इधर पढ़ना, उधर पढ़ना, उधर देखना, उधर सुनना, ये सब आवश्यकता नहीं। ओम शांति। 10 मिनट में इसको पूरा करके फिर 20 मिनट हम योग करेंगे। तो हम बात करते, दिल सच्ची और साफ हो तो विवेक जागृत हो जाता है, और विवेक जागृत होने से थर्ड आई विजडम कहते हैं, सत्य को प्रत्यक्ष शक्ति जागृत होती है, तो निर्णय शक्ति दिव्य हो जाती है। तो निर्णय शक्ति दिव्य हुई तब जा करके हमारे अंदर चार नियम और चार प्रतिज्ञाएं जो बाबा से मर्यादाएं हमारी पक्की होती है, दृढ़ता आती है। शुद्ध सात्विक भोजन सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं समझता हूं ब्राह्मणों की, वो शुद्ध सात्विक भोजन है। जब हम जितना जितना हमारा अन्न शुद्ध सात्विक बाबा की याद में बनाते हैं, बाबा की याद में खाते हैं, सात्विक मान सात गुणों को बढ़ाने वाला भोजन खाते हैं। राजसिक ही बाबा के बच्चे राजसिक भोजन खाते हैं, पराठा पकौड़ा समोसा, ये राजसिक भोजन है, तला हुआ भोजन। वो खा करके हम कभी भी हमारा योग नहीं लगता है, नींद आती है, भारी हो जाता है, हम ऊपर जाना चाहते हैं, ये शरीर नीचे खींचता है। तामसिक माना चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं जिसमें बहुत कॉफी होती कैफीन होती है ना। बाबा के बच्चे सोचते हैं ये तो कोल्ड ड्रिंक पी लो, कोई नुकसान नहीं है, कंपनी की फैक्ट्री की बनी चीज है, पी लो। ये बहुत मसाले खाना, लाल मिर्च खाना, गरम मसाले खाना, ये क्या उत्तेजना पैदा करते हैं, कर्मेंद्रिया एकदम अशांत हो जाती है, बेचैनी पैदा करती है। तो शुद्ध सात्विक भोजन मैंने देखा है, जितने भी हार्ट के पेशेंट हमारे पास आते हैं, दिल वाले जिसे कहते हैं, उनको जब हम देखते हैं कि वो लोग जब बाहर का उनके घर में मान लीजिए उनकी युगल खाना ठीक से बना के नहीं देती, जब अपने आप खुद बना खाना खाने लगते हैं बाबा की याद में, तो उनका योग लगना शुरू हो जाता है। तो शुद्ध सात्विक भोजन सत्संग माना तब मुरली पढ़ने को दिल करता है, बाबा को याद करने को दिल करता है। रासिक भोजन खाओ नींद आएगी, और तामसिक भोजन खाओगे तो क्या होगा, गलत तरफ मोबाइल की तरफ जाएंगे, टीवी की तरफ जाएंगे, ये देखें वहां क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है। मुरली होते भी हाथ में मुरली अंदर जाएगी नहीं, मुरली का चिंतन नहीं चलेगा। तो शुद्ध सात्विक भोजन खाने से, शुद्ध सात्विक अन्न खाने से मन में बाबा का संग करने की दिल पैदा होती है, बाबा की मुरली को मनन चिंतन करने की दिल पैदा, सत्संग होता है। सत्संग बाबा की मुरली और बाबा का संग जब मिलता है ना, भिन्न भिन्न संबंधों का, तो पवित्रता आती है अंदर से, पवित्रता कशिश अंदर पैदा होती है, शुद्धता आती है तन में, मन में, संबंध संपर्क में, और स्वपन में भी पवित्रता आती है। एक मुरली बाबा ने कहा, जब स्वपन तक भी पवित्रता आती तब रूहानियत दिखाई देती चेहरे से, ये तो रूहानी दिखाई नहीं देती है। तब स्वपन, तब रूहाव दिखाई देगा। तो ये जो था, जब दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट एक्टिव होती है ना, जैसे विमान उड़ने से पहले चेकिंग करते हैं ना, क्या क्या है हमारे पास, सब ठीक है, पहिए ठीक है, ब्रेक ठीक है, हमारा जो साधन है पेट्रोल ठीक है, ठीक टैंक भरे हुए हैं, रिफाइंड पेट्रोल है। तो ऐसे ही ये हमारा दिव्य बुद्धि रूपी विमान रॉक लिफ्ट ऊपर जाए, उसके पहले ये चेकिंग, चार चीज जरूरी है, पवित्रता, शुद्ध सात्विक भोजन, सत्संग और दैवी गुणों की धारणा, उसमें भी धैर्यता, गंभीरता और सहनशीलता, तीन दैवी गुण बहुत विशेष। और फिर चार नियम, चार नियम कौन से, पावरफुल अमृत वेला, मैं मास्टर बीजरू बन के परम धाम घर में बीजरू बाप से कंबाइन है, क्योंकि उस समय बैटरी चार्ज होती है। जब हम उठते ना, गहरी नींद किसे कहते हैं, चार से कम संकल्प को नींद कहते हैं। ड्रामा को फुल स्टॉप लगाए तभी तो नींद आएगी ना, तीन संकल्प होंगे, दो संकल्प तभी तो नींद आएगी। जब उठते हैं दो तीन संकल्प में उठते हैं, एबीसी में उठते हैं, और तुरंत हमारा, हमें कहां पहुंचना है, जीरो शिव बाबा है, ब्रह्मा बाबा एक है, तो मुझे दो पे पहुंचना है। तो अमृत वेला एकदम बैटरी तुरंत कनेक्ट हो जाती है बाबा के साथ, प्रकृति भी सत्व प्रधान है तो एकदम कनेक्ट हो जाती है, पावरफुल। बीज रूप स्थिति का मतलब क्या है, बीज रूप माना बाबा जीरो है, शिव बाबा जीरो है, ब्रह्मा बाबा एक है, ब्रह्मा बाबा जीरो से एक के बीच में है। तो मुझे बीज रूप का मतलब क्या है, अशरीरी माना एक से कम, 0.9, 0.8, 0.7, और निराकारी माना 0.0, 0.1, और 0.01 से कम, मतलब 99% जब पाप भस्म हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में बाबा से जुड़ते हैं, तो वो बीज रूप स्थिति है। तो उस समय मास्टर बीज रूप बन के बीज रूप बाप से कलवृक्ष जड़ में बाबा से कंबाइंड, सर्व संबंधों के महिंसार वाली याद से कंबाइंड होकर के सारे कलवृक्ष को सकाश देना होता है। उसमें मेरे अपने विकर्म विनाश होते हैं। ऐसा पावरफुल अमृत वेला करने का अभ्यास होना चाहिए। किंतु बाबा ने कहा वो अमृत वेला अव्यक्त स्थिति में वो रह सकता है जो सारा दिन अंतर्मुखी रहेगा और अव्यक्त रहेगा। अंतर्मुख, अव्यक्त, अलौकिक, जो सारा दिन अंतर्मुखी रहते हैं, मना अंदर से अपने को आत्मा समझ के बाबा से कंबाइंड होकर के वो अपना सोचना, निर्णय करना, देखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, खाना पीना करते हैं, जो सारा दिन स्थिति का अभ्यास करते हैं, वो अव्यक्त फरिश्ता बन सकते हैं। वो अमृत वेला अव्यक्त फरिश्ता बन के अव्यक्त बाप दादा से मुलाकात कर सकते हैं। वो अलौकिक फरिश्ता बन सकते हैं, कार्य व्यवहार में आते अलौकिक फरिश्ता बन सकते हैं। जो सारा दिन बाह्यमुखी रहते हैं उनको अमृत वेला योग होता नहीं है, उनका मुरली में दिल लगता नहीं है। मुरली में दिल उसका लगेगा जो अंतर्मुखी होगा, जिसका बाबा से बाबा से दिल में बाबा बैठा होगा। दिल सच्ची होगी, साफ होगी, विवेक जागृत होगा, तीसरी आंख खुली होगी, निर्णय शक्ति दिव्य होगी, उनको मुरली अंदर पढ़ेंगे, अंदर महसूस होगी, अंदर रिकॉर्ड होगी और सारे मनन चिंतन में चलेगा। तीसरा फिर मुरली का मनन चिंतन, सारा दिन मुरली बाबा ने क्या कहा वो याद आए, सारा दिन अंदर मुरली बजती रहे। हमारे तो जिम में मुरली रहती, क्योंकि सारा दिन हमें जैसे ही मौका मिलता है कार में बैठते हैं, मुरली निकाल लेंगे, वहां पहुंचेंगे, बैठेंगे, वहां मुरली का पॉइंट डिवाइस करेंगे, बीच में मौका मिलेगा बीच में पानी पिएंगे तो मुरली का पॉइंट रिवाइज करेंगे, लंच करने के पहले मुरली रिवाइज करेंगे, जहां भी मौका लगे, जहां भी टाइम मिले, एक आधा मिनट भी मिले तो बाबा का पॉइंट वरदान रिवाइज करो, स्लोगन रिवाइज करो, रिवाइज और रियलाइज बाबा ने मेरे लिए क्या है। सच्चे जिसके दिल में याद किसकी आती है, जो दिल में होता है उसकी ऑटोमेटिक याद आती है। मेरे दिल में बाबा है तो बाबा की मुरली याद आती है, बाबा याद आता है। मेरे दिल में कोई देहधारी है उसकी बात याद आती है, उसको फोन करना है, कोई चीज खाने की है तो वो चीज याद आती है, चाय पीने का टाइम है चाय याद आती है, वो दिल में चाय बैठी हुई है ना, तो दिल की चाय की याद आएगी ना। तो हमें ये देखना है कि मेरे दिल में बाबा है कि नहीं। अगर दिल सच्ची है तो माना बाबा के अलावा कुछ और याद नहीं आएगा। तो जब ये चार नियम चार मर्यादाएं पक्की होती है ना, रोज बाबा को सच 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 समाचार देते हैं, हम तो रोज लेटर लिखते हैं बाबा को, सभी दिल वाले लेटर लिखते हैं बाबा को। और मैं देखा जो इतना अच्छा योग हो जाता है, 15 दिन आप लेटर लिख के देखो बाबा को, रोज सच्चा सच्चा समाचार रोज सोने के पहले दो, बाबा को लेटर लिखो, साइन करके बाबा को देके फाड़ के डस्टबिन डाल दो, डेली करो, देखो 15 दिन में आपकी स्थिति कितनी बढ़िया हो जाएगी, चलते फिरते एकदम फरिश्ता जैसे हो जाएगी। यहां रहते भी आप सूक्ष्म वेतन वासी बन के रहेंगे, एकदम सारा दिन बाबा के पास ही रहेंगे जैसे फील होगा, सेकंड में बाबा के पास पहुंच जाएंगे। ये पेपर क्या है, सेकंड का है ना, वो हमारी कमजोरी कमी कमजोरी अपने खत्म। तो ये चार नियम जब चार मर्यादाएं पक्की होती हैं तो दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट गिफ्ट बन जाती है। और दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट क्या करती है, मुझे आत्मा को 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं से भरपूर पवित्र बुद्धि, पवित्र मन, पवित्र संस्कार रूपी लाइट का सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म वतन में बाप दादा की सार रूपी गोद में पहुंचा देती है। और वहां बाबा से भिन्न भिन्न संबंधों की अनुभूति करते हैं, ज्ञान सागर में समा जाओ, पवित्रता के सागर में समा जाओ। रियल में विजुलाइज नहीं करना है, रियल में महसूस होता है कि ज्ञान सागर, ज्ञान क्या है, मैं आत्मा कैसे बाबा की बच्ची हूं, कैसे बाबा मेरा सर संबंधी है, एक एक संबंध की प्रैक्टिकल अनुभूति होती है। कैसे माँ के रूप में बाबा दिव्य दृष्टि दिव्य बुद्धि दिया, कैसे बाबा के बाबा ज्ञान के रूप में बाबा वर्षा दे रहा है, ज्ञान का, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुखान शक्तियों का, और टीचर के रूप में मुझे सुदर्शन चक्रधारी बना रहा है, सतगुरु के रूप में मुझे मुक्ति, जीवन मुक्ति का वरदान दे रहा है। मतलब हम ड्रिल कर सकते हैं, साकार आकार निराकार की ड्रिल कर सकते हैं, परम धाम में 1 सेकंड में जा सकते हैं। बंधु के रूप में सारा बोझ, लौकिक अलौकिक बोझ जिम्मेवारी बाबा ले लेता है। सखा के रूप में बाबा को हम हर बात सुना सकते हैं। साजन के रूप में बाबा 36 गुणों से भरपूर कर देता है, सजा देता है। सज्जन के रूप में बाबा हमको 16 कला संपूर्ण बना देता है, संपूर्ण निर्विकारी जर्नी है ना, रिटर्न जर्नी है ना, तम प्रधान सत्व प्रधान बनने की जर्नी है, याद की यात्रा है। तो इस रिटर्न जर्नी में बहुत बहुत पेपर आते हैं, बहुत समस्याएं सामने आती हैं, तो उनमें हमें बाबा हमको क्या करता है, हमको शरीर हमको 16 कला मतलब परफेक्ट बनाता जाता है, संपूर्ण निर्विकारी बनाता जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमो धर्म बनाता जाता है। तो बाबा हमको जब ऐसी स्थिति बन जाती है तो बाबा को हम अपना तन मन धन समर्पण करके बाबा को बलिहार चले जाते हैं, तो बाबा हमको हमारा बच्चा बन जाता है। और जब बाबा का हम बच्चे बन जाते हैं, बाबा को अपना बच्चा बनाते हैं, तब बाबा एक्चुअली हमको अपना बच्चा बनाता है। तो ऐसे एक एक संबंध की अनुभूति करते हैं तो तब मन बुद्धि को हम समेट के अशरीरी आत्मा बन के परम धाम घर में अशरीरी बाप से कंबाइंड हो जाते हैं, तो हमारे अंदर करंट आने, बैटरी चार्ज होने लगती है, तब हमारे अंदर सहन करने की शक्ति आती है, ऐसे केमिकल रिलीज होने लगते हैं जिससे हमें पेन दर्द महसूस ही नहीं होती, कोई हमारी ग्लानी करे में ग्लानी फील ही नहीं होती, हमारा आभामंडल बड़ा हो जाता है। तो सहन करके समाने की शक्ति आ जाती है, सामना करने की शक्ति आ जाती है, सहयोग करने की शक्ति आ जाती है, इससे हमारे विक्रम विनाश होते हैं। विक्रम विनाश होने का तरीका यह है, जो गलत किया है वो व्यक्ति हमें तंग करेंगे उसको हम सहन करके संभालें, और भी प्रॉब्लम आएंगी उसको सामना कर लें और उन्हीं को हम सहयोग भी करें, तब सातों एनर्जी का बैलेंस होता है, तब हीलिंग एनर्जी होती है, तब ज्वालामुखी शक्तिशाली योगिनी जागृत होती है, तब हमारा चित्त शांत एकाग्र आनंदमय होता है, तब चिंतन चलना जैसा चित्त वैसा चिंतन, जब चित्त हमारा आनंद स्वरूप होता है ना, सच्चित आनंद स्वरूप बन जाते हैं, तो चिंतन मुरली का चलता है, फिर हमारे चिंतन से भावना शुभ भावना बनती है, शुभ भावना से वाइब्रेशन निकलते हैं, बाबा के पास जाते हैं, बाबा से वाइब्रेशन मेरे पास आते हैं, टचिंग पावर कैचिंग पावर होती है, रूहानी वृत्ति बन जाती है, रूहानी दृष्टि रूहानी वायुमंडल बन जाता है, और वो वायुमंडल फिर हमको फील होता है, अंदर रिकॉर्ड होता है, उसी से चेहरा और चलन बनता है, उसी से हमारा व्यवहार बदलता है, प्रैक्टिकल व्यवहार में दैवी गुण दिखाई देते हैं, जिससे दूसरे परिवर्तन होते हैं, इसी को हम अव्यक्त रूप कहते हैं, जो दादियों के अंदर हमने देखा, रूहानियत और रूहाव, व्यवहार आहार, खाली मुख का आहार नहीं, नैनों का आहार, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल चलन हमारी बदल जाती है, हमारा विहार बदल जाता है, अर्थात हमारी चाल बदल जाती है, और उससे हमारे हम कर्मेंद्र जीत बनते जाते हैं, माया जीत बनते जाते हैं, प्रकृति जीत माना शरीर रूपी प्रकृति हमारे वश में हो जाती है, प्रकृति के पांचों तत्व भी हमारे वश में हो जाते हैं, अर्थात मैंने बड़ी जानकी दादी को देखा, जानकी दादी चलती थी ना, ऐसा शरीर दादी का कैसे था, 100 साल की दादी हो गई थी, कई बार शरीर की तबीयत बहुत खराब होती थी दादी, तो भी शाम को 7 बजे क्लास में पहुंच जाती थी, हिम्मत करती दादी, देखो 6:50 दादी तबीयत अच्छी नहीं है, फिर दादी हिम्मत करेगी, उठेगी और क्लास में आ जाएगी, और फिर आके दादी आधा घंटा योग कराएगी, क्लास कराएगी, तो दादी प्रकृति जीत बन गई थी, तो प्रकृति, ये शरीर हमारा कैसा भी पुराना हो साथ देता है, तो प्रकृति जीत, फिर विकर्मा जीत, फिर हमसे विकर्म होने बंद हो जाते हैं, जब विकर्म होने बंद हो तो कर्मातीत बन जाते हैं, तो कर्मातीत बनते तो मास्टर बीज रूप बन के बीज रूप आपसे कंबाइंड रहते हैं, तो ये स्थिति हमें 1 सेकंड इसका अभ्यास करते 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 हम क्या होते हैं, व्यक्त से अव्यक्त बनते जाते हैं, और ये अभ्यास की भी आवश्यकता है, तो चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर समय बाबा और बाबा की मुरली सारा दिन दिल में चलती रहे, बीच बीच में अच्छी स्थिति का अभ्यास करते जाओ, दिल करते रहो, तो इससे हम धीरे धीरे अव्यक्त से व्यक्त से अव्यक्त बनते जाएंगे। इसके लिए याद रहे, पहला अंतर्मुखी बनना बहुत जरूरी है, अंतर्मुखी, दूसरा अव्यक्त, अव्यक्त माना अंतर्मुखता से अव्यक्त, अव्यक्त स्थिति माना हम प्रवाह हमारे अंदर ज्ञान का, आत्मा पवित्रता शांति प्रेम सुखानंद शक्ति का प्रवाह रहेगा, इसी को अव्यक्त कहते हैं, आत्मा सातो चैतन्य आत्मा भरपूर रहेगी, और अलौकिक, तब हमारा व्यवहार लौकिक में रहते हुए, इस लौकिक संसार में रहते हुए अलौकिक फरिश्ते के समान हो जाएगा। ओम शांति। चलिए अब हम सभी 16 मिनट हमारे पास है, 16 मिनट पावरफुल याद में बैठते हैं, सभी अलर्ट होकर सीधे होकर बैठ जाओ, बहुत ही पावरफुल अंतर्मुखी होकर के और बाबा से कंबाइंड हो जाओ, बैटरी को चार्ज करना है सब संबंधों के महीन सार वाली याद के साथ, और फिर बाबा से हम अपनी बैटरी को सूक्ष्म, अपने मन को शुद्ध बनाएंगे, टीम को पॉजिटिव बनाएंगे, दिव्य बुद्धि रूपी डिटेक्टिव होगी, सूक्ष्म वतन बाप दादा की गोद में जाएंगे और वहां से परमधाम जाएंगे। चलिए सीधे होके बैठ जाइए,
हम भाई सबका जोरदार तालियों से धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं। और अभी सभी टीचर्स बहनों की एकाउंट